उन मित्र द्रोह के पश्चात आज के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को यह संकेत दे रहे हैं कि कुल का जो क्षय होगा, मैं जो इनको मारकर, अर्जुन का विश्वास देखिए, अर्जुन यहां पर बिल्कुल भी भगवान श्री कृष्ण को यह नहीं कह रहे कि मैं हारूंगा, यदि मैं हार गया तो। इस श्लोक में अर्जुन कहने वाले हैं कि मैं इन सब को मार डालने वाला हूं, ये सब मरने वाले हैं मेरे हाथों, तो ये मर जाएंगे तो कुल प्रणश्यन्ति, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, ये पूरा कुल का नाश होगा। और कुल का नाश हो गया तो फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म का नाश होगा, और कुल धर्म का नाश होगा तब अधर्म बढ़ेगा। तो आज का ये श्लोक हम अर्जुन जो कुलक्षय प्रणश्यन्ति जो गौर किए हैं इसके ऊपर, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, अधर्मोभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, अधर्मोभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, अधर्मोभिभवत्युत। तो यहां पर इस एक श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति के वजह से कुल धर्म प्रणश्यन्ति, कुल धर्म का नाश होगा, कुल का नाश होने के वजह से, और उसके वजह से अधर्म अभिभवति, अधर्म बढ़ेगा। हालांकि कलयुग में हमें कुल धर्म, कुल इसका नाश होने से क्या क्या होता है, इसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, परंतु उस समय द्वापर युग के समय ये बहुत महत्व रखता था। अब यहां पर देखिए, श्लोक में अर्जुन कहते हैं कुल धर्मा सनातन, कि ये कुल धर्म जो है, ये जो हमारा कुल है कुरु कुल, ये सनातन है। तो मानो भगवान श्री कृष्ण पूछें कि अर्जुन तुम बोलते हो कि ये कुल और कुल धर्म सनातन है, तो फिर नष्ट कैसे होगा? सनातन का अर्थ क्या होता है? जो नष्ट न हो सके वो है सनातन। तो मानो भगवान पूछे अर्जुन से तो फिर नष्ट कैसे होगा, क्यों चिंता करते हो? कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म प्रणश्यन्ति, क्यों चिंता करते हो? यहां पर अर्जुन बहुत ही गहराई से सोच के बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में यह पूरा कुल मौजूद नहीं था कुरुवंश का, केवल कुछ गिने चुने योद्धा मौजूद थे। तो उनका पूरा परिवार कहां था? उनके घरों में उनकी स्त्रियां, पत्नियां, उनके बच्चे, तो सभी वहां पर एकत्रित नहीं हुए थे रणभूमि में। तो अर्जुन कहते हैं कि ये जो प्रमुख कुल के सदस्य, जब इन्हें मारा जाएगा तो बाकी जो घर में बैठे हुए हैं उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। कैसे आप समझोगे? अर्जुन देखो कहां सोच रहे हैं, जो घर में बैठे हुए हैं उनके विषय में सोच रहे हैं, जो इनकी पत्नियां इनके बच्चे। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये यहां पर नष्ट हो जाएंगे तो उनका धर्म नष्ट होगा। कैसे, क्या संबंध है? उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं होगा। यहां पर अर्जुन किस प्रकार के संरक्षण की बात कर रहे हैं? शारीरिक नहीं, धर्म का संरक्षण उसकी बात कर रहे हैं। तो अर्जुन देखते हैं कि ये जो योद्धा कुरु वंश के योद्धा एकत्रित हुए हैं, ये अपने परिवारों के प्रमुख सदस्य हैं और ये मरने के पश्चात उस परिवार में कोई नहीं रहेगा जो उनको धर्म का मार्ग दिखा सके। अर्थात अर्जुन यहां पर भगवान श्री कृष्ण को और हम सबको यह बता रहे हैं कि किसी भी परिवार में जो प्रमुख सदस्य होते हैं परिवार के, जो अग्रज होते हैं परिवार के, वरिष्ठ होते हैं, उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है कि बाकी सारे परिवार को धर्म के मार्ग पर चलाना। तो इससे क्या समझ में आ सकता है कि यदि जो प्रमुख परिवार के सदस्य पारिवारिक अन्य सदस्यों को धर्म के मार्ग पर नहीं चला रहे तो क्या हो रहा है? कुल धर्म प्रणश्यन्ति। हालांकि कलयुग में आप देखोगे कि घर है, परिवार है, सारे सदस्य एक साथ रह रहे हैं। कई बार आप देखो, मैं कुछ वर्ष पहले औरंगाबाद में था, वहां पर एक परिवार जॉइंट फैमिली 40 सदस्य एक साथ रहते हैं। उनका एक अलग से उनकी बिल्डिंग ही है, वो बिल्डिंग में 40 सदस्य, सब प्रकार के चाचा ताऊ चचेरा ममेरा सारे एक साथ, कुछ 4-5 पीढ़ियां एक साथ। परंतु देखा मैंने कि सबका अलग अलग किचन, सबका अलग अलग किचन, और सबसे विशेष सबका अलग अलग टेलीविजन। मेरे ख्याल से वो टेलीविजन लाने की वजह से सबका किचन अलग हो गया, क्योंकि वो टेलीविजन में वही दिखाया जाता है कि ये तुम्हारी सास और ये तुम्हारी बहू, अलग होना ही है इनको। तो केवल एक बिल्डिंग में पारिवारिक सदस्य एक साथ रहें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कुल धर्म पालन हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि हां ये सारा कुल एक साथ रह रहा है, परंतु केवल शारीरिक रूप से एक साथ रह रहा है। कितना धर्म पालन हो रहा है ये प्रश्न चिन्ह है। तो अर्जुन यहां पर भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हां वो कुल सनातन है, परंतु वो कुल धर्म जब तक नहीं सिखाया जाएगा वो सनातन नहीं रहेगा, वो नष्ट होगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि कोई किसी कुल में पैदा हुआ है और उस कुल का कुछ धर्म है, और जैसे पीढ़ियां पैदा होती हैं तो देखा जाता है कि लोग भूल भी जाते हैं कि वो कौन से कुल में पैदा हुए, धर्म तो छोड़ दीजिए। हालांकि कलयुग में तो हम सब जो पैदा हुए हैं, चाहे कोई भी हम अपना कुल बताएं, हम सब शास्त्र के अनुसार जन्मना जायते शूद्र, एक कुल है हम सबका। चाहे कोई बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कोई बहुत निचले कुल में पैदा हुआ हो, एक कुल, हम सब जन्मना जायते शूद्र हैं। परंतु ये प्रयोजन दिया गया है, संस्कारा भवे द्विज, संस्कार के द्वारा अर्थात उस धर्म के पालन के द्वारा कोई यदि शूद्र भी पैदा हुआ है तो द्विज ब्राह्मण कुल में अपने आप को परिणित कर सकता है, और यदि नहीं तो यदि ब्राह्मण कुल में भी जन्मा है तो भी अधम, पालन यदि नहीं कर रहा। जैसे हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी देवामृत महाराज, वो अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहां पर प्रीचिंग ज्यादा करते हैं, तो वहां पर काफी भारतीय इनके कार्यक्रम में आते हैं जो वहां सेटल हुए हैं। तो वो एक घटना सुना रहे थे कि एक साउथ इंडियन फैमिली इनके पास आए जो वहां पर सेटल हुए, और उनके परिवार की कुछ समस्या थी। समस्या ये थी कि उनका जो 25 वर्षीय लड़का, वो लड़के लड़के का रिश्ता किसी वहां के एक और भारतीय महिला के साथ हुआ और वो लोग शादी करना चाहते थे। तो ये लड़का ब्राह्मण कुल में पैदा और वो लड़की ब्राह्मण कुल में नहीं थी, परंतु समस्या यहां तक नहीं हुई, केवल बात यहां तक पहुंच गई थी कि जो वो लड़की थी वो शादी से पहले गर्भवती हो गई। तो अब बताया गया कि भाई अब शादी करनी होगी, तो जो लड़के के माता पिता वो शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो लड़की ब्राह्मण कुल की नहीं। तो वो इनके पास आए ये समस्या लेके कि आप कुछ इसको सुलझाइए। तो इन्होंने जब पूरी कहानी सुनी और कहां पर बात अटक रही थी, ब्राह्मण कुल में लड़की नहीं पैदा हुई, हमारा लड़का उच्च साउथ इंडियन ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, इतने उसके सुंदर कार्य देखिए, और लड़की ब्राह्मण कुल में कुल की नहीं है। तो देवामृत महाराज ने पूछा, बाय द वे डू यू नो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ ब्राह्मण? और उन्होंने कहा, एज फार एज आई नो ब्राह्मणास दे डू नॉट बिगेट चिल्ड्रन बिफोर मैरिज। तो वो बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है, उस बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा, और बाकी सब ढोल पीटा जा रहा है कि हम ये कुल के हैं, ये वो कुल की है, नीचे कुल की है, हम ऊपर कुल के हैं, परंतु कार्य क्या है? इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर, उनका मिदनापुर में एक विवाद हुआ ये तथाकथित ब्राह्मणों के साथ जो केवल अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैदा हुए हैं ब्राह्मण कुल में और हमारा ये नाम है, ये गोत्र है, उसके अनुसार हम सबसे ऊंचे श्रेणी के हैं। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने एक मुद्दा उनके सामने रखा कि आप यदि अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हो, ब्राह्मण कुल का मान रहे हो, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न के आप उत्तर दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछे उनसे कि ये ब्राह्मण कौन है, ये शरीर है ब्राह्मण या जो आत्मा है शरीर के अंदर वो ब्राह्मण है, ये दोनों में कौन ब्राह्मण है? तो अब इतना तो वो मान्य करेंगे कि शरीर और आत्मा अलग है, अगर अपने आप को ब्राह्मण कुल का बोलते हैं तो थोड़ा तो शास्त्र भगवद गीता पढ़ा होगा ना। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा शरीर, क्योंकि शरीर पैदा हुआ है ना, आत्मा तो अजन्मा है। यदि वो बोलते कि आत्मा ब्राह्मण है तो तुरंत ये उत्तर मिलता कि आत्मा तो फिर सबका एक समान है, वो तो कभी पैदा होता नहीं और वो कभी मरता नहीं। तो ब्राह्मण है क्या फिर? शरीर। तब फिर उन्होंने इनसे पूछा, तो ब्राह्मण शरीर, ये जो शरीर है वो ब्राह्मण है आपके अनुसार, क्योंकि वो किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। तो अब यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो वो शरीर ब्राह्मण का रहेगा, क्योंकि उनके अनुसार ये शरीर ब्राह्मण है ना। तो यदि मरने के पश्चात आत्मा निकल गया, अब मृत शरीर है, तो वो ब्राह्मण का शरीर है या किसका शरीर है? तो हो गए, हाँ और क्या, ब्राह्मण का है। अर्थात जब अंतिम संस्कार उस व्यक्ति का, उसका पुत्र करेगा, तो उसको अग्नि देगा ना, अर्थात वो ब्रह्म हत्या कर रहा है। क्योंकि एक ब्राह्मण के शरीर को जला रहा है, ब्रह्म हत्या हुई ना, सबसे बड़ा पाप। तो वो आप अभी घुमाओ मत हमको ये सब। उन्होंने कहा मैं कहा, मैं तो केवल आपको कुछ प्रश्न पूछा हूं और आप ही ये सब उत्तर दे रहे हो, तो मैंने खाली शास्त्र को आपको सुनाया कोट कर। और फिर तीसरे स्कंद से उन्होंने कहा, भागवत के तीसरे स्कंद में कहा गया है कि यदि ये शरीर ब्राह्मण है, क्योंकि शरीर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो ये शरीर जब पैदा होता है तो शरीर के साथ कीड़े और जीवाणु भी पैदा होते हैं। माता के गर्भ में वो शिशु के साथ गर्भ में बहुत छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु भी होते हैं, हम सबके शरीर में होते हैं। तो जब कोई शिशु पैदा होता है तो वो प्रसव के साथ वो जीवाणु कीटाणु भी पैदा होते हैं। तब फिर ये पूछा गया, तो वो सहोदर हुए ना, उसी उदर से वो भी पैदा हुए हैं, तो वो जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो भी फिर शुक्ला चतुर्वेदी त्रिवेदी, उनको भी वो सरनेम मिलना चाहिए, उनको भी जनेऊ पहनाना चाहिए। कीड़ों को ना, वो जीवाणु, वो भी बोल सकते हैं पैदा होते ही, हम भी चतुर्वेदी, मैं सहोदर, एक ही उदर से पैदा हुआ। यदि केवल इस बात को कोई ले कि पैदाइशी मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे वो दर्जा मिलना चाहिए ब्राह्मण का। तो यहां पर ये मुद्दा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अर्जुन यहां पर ये नहीं बोल रहे कि हम पैदाइशी इस कुल में हैं, इसके वजह से ये कुल बहुत प्रगत है या ये कुल का नाश होगा जब हम मर जाएंगे, नहीं, सनातन बोल रहे हैं उस कुल को, कुल धर्म सनातन, वो कुल सनातन है। परंतु यदि उसमें वो कुल धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो नष्ट होने वाला है, कुल धर्म नष्ट होने वाला है। तो इसलिए यहां पर विशेष रूप से भारत में जो जातिवाद इतना फैला हुआ है आज तक, हालांकि किसी को कुछ पता नहीं कि जाति का मतलब क्या होता है और कौन से जाति में कौन पैदा होने के पश्चात उसका धर्म क्या होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है, परंतु कई बार लेके बैठे। आजकल तो मुझे बताया गया कि उल्टा हो रहा है, आप यदि बताओ कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। तो यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो जानबूझ के लिखता है SC ST, क्योंकि यदि केवल इतना बताएगा कि अरे मैं तो ये हूं वो ब्राह्मण, इतने वेद पढ़े हुए हैं, तो फिर कोई नौकरी मिलने नहीं वाली, वो वेद तो नौकरी दिलाएगा नहीं और वेद से तो कुछ खाना पीना होने नहीं वाला, पता नहीं ज्यादा भी होता है कई बार यहां नासिक में। अब आगे अर्जुन यहां पर कौन से कुल धर्म की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय कुल धर्म की बात कर रहे हैं अर्जुन। तो हम देखना चाहेंगे कि इसका रिमोट देना, क्षत्रिय धर्म के विषय में हमारे शास्त्र में क्या बताया गया है? आप लोग जानते हैं क्षत्रिय इस शब्द का अर्थ क्या है? केवल जो लड़ाई करे वो नहीं क्षत्रिय। हिटलर क्षत्रिय था? हिटलर क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जो जन साधारण या प्रजा की क्षति को हरे, क्षति से दूर करे उनको, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय। तो यहां पर बताया गया है कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनको दान करना चाहिए किंतु कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो अर्जुन अपने कुल धर्म के विषय में बोल रहे हैं और आगे चलकर भगवान को यह बोलने वाले हैं कि यदि मैं भिक्षुक का भी जीवन जीऊं तो भी मुझे मान्य है, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। परंतु क्षत्रिय धर्म के अनुसार भीख मांगना एक क्षत्रिय को वो उसका धर्म नष्ट करना है। और यज्ञ क्षत्रिय को करना चाहिए परंतु वो यज्ञ करा नहीं सकता। यज्ञ कौन कराता है? ब्राह्मण, और वो भी प्रामाणिक ब्राह्मण, आजकल वाले नहीं। जैसे यज्ञ की महिमा क्यों बताई गई है? क्योंकि यज्ञ में जो अग्नि है वो स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं। यज्ञो वै सह। तो हमारे एक बंबई के भक्त वो बता रहे थे कि कलयुग में ये यज्ञो वै सह या भगवान श्री विष्णु जो अग्नि यज्ञ के रूप में पिछले युगों में, जैसे कि द्वापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ के रूप में अवतरित हुए, तो कलयुग में लोग उसे किस प्रकार से समझते हैं। तो एक तथाकथित ब्राह्मण बंबई में रहने वाला, उसका वाद विवाद चल रहा था अपने पड़ोसी के साथ, और ये अपने जीवन में बाकी सारे भी कार्य, नशा करना, मांस खाना, ये सब कुछ, परंतु ब्राह्मण, टीका विका भी दिन में सुबह सुबह लग जाता था। तो ये अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हुए हाथ में बीड़ी, जलती हुई बीड़ी है, हाथ में जलती हुई बीड़ी है, और ब्राह्मण कुल और शास्त्र के ऊपर विवाद चल रहा है, और कुछ शास्त्र जानता तो ये कुछ नहीं था, परंतु केवल इतना कि मैं पैदा हुआ हूं ब्राह्मण कुल में और यज्ञ वगैरह इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता था। तो हाथ में जलती हुई बीड़ी लेके अपने पड़ोसी को बोलता है, अग्नि साक्षी है, मैं जो बोल रहा हूं ना ये अग्नि साक्षी है। तो वो उसका यज्ञ था। तो उस प्रकार के यज्ञ यहां पर नहीं बताए गए, परंतु जो प्रामाणिक ब्राह्मण, प्रामाणिक यज्ञ जो कराते हैं, तो क्षत्रिय का धर्म है यज्ञ करना, परंतु वो करा नहीं सकते। वेदों का अध्ययन करना चाहिए किंतु वेदों को पढ़ाना नहीं चाहिए। ये क्यों इस प्रकार के नियम बताए गए हैं, कोई मुझे समझा सकता है कि ये करना और ये नहीं करना? जैसे कि वेद, तो कोई पूछ सकता क्यों नहीं पढ़ा सकते? यदि पढ़ा है तो पढ़ा सकता है ना। हालांकि ये सब कलयुग की बातें नहीं हो रही, आप ये जान लीजिए, कलयुग में हमने पहले निर्धारित कर दिया है, हम सब जन्मना जायते शूद्र हैं। तो क्यों ये विरोधाभास जैसा लग रहा है यहां पर, ऐसा क्यों है? एक मिनट, एक एक करके। वर्णाश्रम के अनुसार, अच्छा भक्ति शास्त्री की पढ़ाई अच्छी हो रही है। वर्णाश्रम के अनुसार सबको अपना अपना निर्धारित स्वधर्म करना चाहिए, यहां से कोई? हाँ जिसका काम उसको साजे, पढ़ाने का काम किसका है? ब्राह्मणों का। लेकिन क्यों? क्षत्रिय नहीं पढ़ा सकते? जैसे कि एक 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 साधारण उदाहरण से हम समझ पाएंगे। एक समाज में आप देखो तो अलग अलग पेशे के लोग होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, इस प्रकार कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई झाड़ू बेचने वाला है। तो आप देखो यदि सभी एक काम करने लग जाए या कोई किसी और का काम करने लग जाए तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि श्रेयान श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म भयावह, कि जब कोई काबिल नहीं है उस काम करने के तो वो भयावह। अब यहां पर अक्सर हमें क्या लगता है कि यदि कोई शूद्र वेद पढ़ाना शुरू करे तो वो भयावह होगा। हां यदि वो काबिल नहीं है पढ़ाने के तो भयावह होगा, परंतु विपरीत भी भयावह हो सकता है। यदि कोई ब्राह्मण को हाथ में झाड़ू दे तो वो भी भयावह है, क्योंकि वो झाड़ू नहीं लगा पाएगा। या केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को यदि लें तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? यजन याजन पठन पाठन ये सब कुछ। तो यदि उनके हाथ में आप राइफल थमा दो तो यदि उन्हें उस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिला तो वो भयावह होगा उनके हाथ में वो देना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद इस मुद्दे को बुला करते थे, उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रीचिंग शुरू किए थे 60s में, तो कितने सारे अमरीकी युवकों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था। देखा, हां दो हाथ दो पैर चलो अंदर। और कितनों को तो युद्ध कैसे करना चाहिए वो साहस जो क्षत्रियों का होता है, उस प्रकार का धाड़स साहस और वो एक क्षत्रिय के अंदर जो युद्ध करने का कौशल होता है वो कुछ नहीं इनके अंदर। कोई प्रशिक्षण कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, जाओ सीधा सामने इसको देखो, ये वर्दी में जो खड़ा है उसे मारो कैसे भी, राइफल चलाने नहीं आती उठाकर सर पे मारो उसके, कैसे भी कुछ तो करो। तो हमारे आगे चलकर वो हमारे इस्कॉन के एक भक्त बने, उन्हें जबरदस्ती वियतनाम में भेजा गया था। तो वो बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ वहां पर वियतनाम वॉर में। हुआ क्या कि जबरदस्ती भेजा गया था, उन्हें कुछ पता नहीं कि कैसे गोली चलाई जाती है। तो बाकियों के साथ वो खड़े थे, इतनी सारी सामने से गोलियां आ रही थी, वो डर गए, वो गड्ढे में छिप गए। वो गड्ढे में छिप गए तो बाकी जो थे उनके बाकी सैनिक उनके ही देश के, उनमें बहुत से सैनिकों को गोली लगी और वो वहां पर मूर्छित घायल कई तो मर भी गए। अब ये धीरे धीरे गड्ढे से बाहर आए और इन्होंने देखा कि कुछ गोलियां अभी भी चल रही थी शत्रु पक्ष की तरफ से, तो उन्होंने अपने ही सेना के एक मृत शरीर को पकड़ा और अपने सामने इस प्रकार से खड़ा किया और छिपते हुए उस मृत शरीर के पीछे अपने बेस कैंप तक पहुंचे। और हुआ क्या कि उनके सौभाग्य के वजह से, जो भी उनका सौभाग्य रहा हो, वो अब तक जिंदा था, वो जिनको सामने ढाल के रूप में रखकर वो अपने बेस कैंप तक पहुंचे। तो उनका जो कैप्टन सीनियर, उसने जब देखा तो उसे लगा कि इसने देखो अपने जान को जोखिम में डाल के अपने मित्र सैनिक को बचाया तो मेडल मिला इनको। तो ये समझाने वाले थे कि मैं क्यों उनको इस प्रकार से घसीटता हुआ सामने रखते हुए लेकर आया, परंतु उससे पहले, अरे व्हाट अ वंडरफुल एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, यू सेव्ड वन ऑफ योर ओन कॉमरेड्स, मेडल पे मेडल पे। ठीक है भाई, मेडल तो मेडल ठीक। तो ये हालत, ये उबले, ये कलयुग के क्षत्रिय। मैं आपको ईमानदारी से कहूंगा, मैं जब वायुसेना में था तो अधिकांश वहां पर जो सैनिक, वायु सैनिक जो मैं जिनको जानता था, इतना वो लोग रोज दारू पीते थे कि बंदूक चलाना तो छोड़ दीजिए, उनको यदि कोई प्लास्टिक की लकड़ी भी हाथ, या लकड़ी का टुकड़ा भी हाथ में दें, या प्लास्टिक की बंदूक भी दें, उससे भी वो शत्रु को कुछ नहीं हानि पहुंचा सकेंगे। उनका पूरा अंदर का सब गुर्दा और ये सब कुछ क्षीण हुआ इतना दारू पी पी के। और कई तो ऐसे मरीज अगरबत्ती की जैसे, और हैं वो सेना में, और यदि उनको पूछा जाए कि आप कितना युद्ध कौशल जानते हैं या प्रशिक्षण किसका ले रहे हैं किसी युद्ध से पहले, तो ज्यादातर इतनी बुरी आदतें और बुरी आदतों के वजह से सबसे ज्यादा नशा इन्हीं लोगों का होता है। साधारण व्यक्ति, क्योंकि वहां पर दारू बहुत सस्ती मिलती है और ओरिजिनल, तो मुझे कई जो मेरे, क्योंकि मैं ये सब तो कभी बचपन से भी नहीं किया, उधर तो बिल्कुल मैं नहीं करता, तो मुझे मेरे कई मित्र बोलते हैं, अरे तुम्हारा वो दो रम कार्ड, उसे बोलते हैं तुम्हारा रम कार्ड दो, ताकि जो हमने दो बोतल अंदर की और चार अंदर करें। और ये उनका प्रशिक्षण चल रहा है, यदि युद्ध हो तो किसी शत्रु पक्ष से लड़ने के लिए, इतनी दारू पी पी के और वो नशा कर करके। तो इसलिए यहां पर ये जो हम क्षत्रिय धर्म के विषय में पढ़ रहे हैं, ये क्षत्रिय धर्म भी बहुत ऊंचा है। प्रजा पालन, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक क्षत्रिय, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विषय में बताया गया था कि हां, ये एक ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, और उनका स्लोगन क्या था कोई जानता है? गो ब्राह्मण प्रति पालक हेतु। तो क्षत्रियों को हालांकि पूरी प्रजा का पालन और उनका रक्षण करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से इन पांच का, ब्राह्मण, गो, स्त्री, बालक और वृद्ध। और कलयुग में आप देखिए कि किस प्रकार से इनको लेकर, इनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। क्या ब्राह्मण तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खुद अत्याचार कर रहे हैं उसके नाम पर, परंतु सही जो ब्राह्मणत्व का पालन कर रहे हैं उन्हें कौन बढ़ोतरी दे रहा है? आप यदि जाकर कहो कि आपने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, वेदांत सूत्र, उपनिषद, इसमें पीएचडी की है, तो क्या हम क्या करें? आप इसको सराहेंगे? परंतु यदि यह कहा जाए कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग, ये सब कुछ किया है, ये सारे, कोई डॉक्टर बना है, कोई लॉयर बना है, कोई ये सब प्रशिक्षण लिया है, तो उसको बहुत मान्यता मिली दी जाती है। हालांकि ये सब जो पढ़ने का कार्य है, ये बुद्धि का कार्य है और ये ब्राह्मण का कार्य है, परंतु ब्राह्मण को बुद्धि किसमें लगानी चाहिए? केवल ये शरीर में कहां कहां क्या पुर्जे हैं वो देखने में नहीं, आत्मा, ये शरीर के परे जो आत्मा है वहां से ब्राह्मण की पढ़ाई शुरू होती है। गौवें, आप देखिए भारतवर्ष में ये जो धर्म की भूमि कहलाई गई है, इस भारत भूमि में रोज कुछ 40,000 से ज्यादा गौओं की रोज हत्या होती है। किसके लिए? खाने के लिए, ये इस धर्म भूमि में। और मुझे बताया गया था कि गौएं, यदि कोई आप गौ पालना चाहते हो और आप कहीं से गौ लेना चाहते हो आपके कहीं पर गौशाला में लाने के लिए, तो इतने सरकारी नियम हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि गाय कोई ले जाना चाहता है, जैसे हाल ही में हमारे जो फार्म है वाड़ा, वहां पर हम कुछ गाय मंगाए जयपुर से, राजस्थान से, तो वहां से महाराष्ट्र में गाय लाने के लिए इतने सरकारी कागजात होते हैं और इतने नियम लागू हैं, और उन्हें पूछो कि रोज इतनी सारी गौएं जो काटी जाती हैं ये कसाई खानों में, वहां पर कोई कागजात नहीं, कोई कागजात नहीं। इसलिए वृंदावन में एक बाबा जी हैं, उनकी गौ सेवा बहुत विचित्र टाइप की गौ सेवा है। वो करते क्या हैं कि ये जो कसाई खाने हैं जितने सारे वो यूपी में और आसपास, तो वहां जाते हैं और बंदूक की नोक पर वो सारे गौओं को रिहा करते हैं, अपनी गौशाला में लाते हैं। जैसे जैसे कोई डाकू करता है ना, बंदूक की नोक पर जेब खाली करो, वैसे कसाई खाना खाली करो, सब गायों को बाहर निकालो। और उनके ऊपर इतने केस हैं, ये हमारी सरकार, ये जो गौओं का पालन करनी चाहिए उनके ऊपर केस कर कर रखा है, और कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाता उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सही कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यही एक भारतीय को करना चाहिए, गायों की रक्षा। तो उनकी गौशाला में इतनी सारी ऐसी गायें हैं जो कसाई खाने से छुड़ाई गई, और उनको कई बार लोग आकर डोनेशन देते हैं गौ सेवा के लिए, उनका डोनेशन चालू होता है 1 लाख के ऊपर। और वो कहते हैं यदि आप, क्योंकि उनके पास हजारों गायें हैं अभी वो देखभाल करने के लिए, इतनी गायों को उन्होंने बचाया है, और वो कहते हैं कि यदि आप वो रकम नहीं दे सकते इनकी सेवा के लिए तो मेरे साथ आइए बंदूक लेके, मेरे साथ आइए और ये जितने सारे भारत में कसाई खाने हैं यहां से इन गौओं को छुड़ाइए। स्त्रियों, गौओं, बालकों, वृद्ध व्यक्ति, इन सब का रक्षण क्यों, इन सब का रक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार आगे भी अर्जुन कहने वाले हैं स्त्रियों के विषय में, और कैसे स्त्रियों का धर्म नाश होता है, स्त्री धर्म प्रणश्यन्ति के वजह से जो शिशु उत्पन्न होते हैं उनका धर्म नाश होने वाला है। और वृद्ध व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि वृद्ध व्यक्ति किसी परिवार में लाइब्रेरी के समान माने जाते थे पहले। जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते समय कुछ समस्या आ जाए उसे, तो वो लाइब्रेरी जाता है रेफर करने के लिए, तो वैसे ही ये जो वृद्ध व्यक्ति परिवार में होते थे लाइब्रेरी के समान, कि जब भी परिवार में कुछ समस्या हुई, पति पत्नी में, जो बहू बेटे में कोई समस्या हुई, तो वो जाते थे लाइब्रेरी को रेफर करने। कौन? दादी माँ, दादाजी, इन सबको रेफर करने के लिए। तो वो लोग कहते थे हाँ, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम में भी ऐसा हुआ था और हमने क्या किया था। हालांकि केवल उतना नहीं, बल्कि उनको भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं कि दादा दादी टीवी देख रहे हैं 24 घंटा और फिर वो लोग कोई समस्या लेकर आते हैं कि आप ये समस्या सुलझाएंगे, अरे देखो ना कितना अच्छा सीरियल, इसमें देखो कैसे सास क्या कर रही है बहू को। वो उस प्रकार के वृद्ध व्यक्ति नहीं, परंतु वो वृद्ध व्यक्ति जो वो लाइब्रेरी का रोल निभाए। तो इसलिए एक क्षत्रिय का ये धर्म कि उनका पालन, ये प्रजा का पालन वो ठीक से कर सके, और अंततः धर्म युद्ध लड़ना। केवल युद्ध नहीं, कई बार लोग मुझे, कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि मैं क्षत्रिय परिवार में जन्मा हूं, राजपूत सिंह, और जैसे अर्जुन ने शस्त्र उठाए और मार डाला दुर्योधन इत्यादियों को, तो क्या मैं भी भगवत गीता का पालन करते हुए, अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए, मैं जो राजपूत सिंह मार सकता हूं किसको, जो भी आए सामने, दुर्योधन की कैटेगरी वाले? नहीं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो युद्ध लड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो धर्म युद्ध था, धर्म की स्थापना हेतु युद्ध। तो आजकल ये जो तथाकथित युद्ध चलते हैं, वो युद्ध बिल्कुल धर्म की स्थापना नहीं, बल्कि अधर्म की स्थापना हो रही है। तो वो जो क्षत्रिय का ये धर्म है, उसका भी नाश हो रहा है। अब कुछ उदाहरण कुल धर्म के भक्षक के, टॉप लिस्ट में देखिए कौन है, इन सब के सरदार दुर्योधन। दुर्योधन के विषय में, दुर्योधन ने कैसे अपने कुल धर्म का नाश किया या कुल धर्म का भक्षक बना दुर्योधन, इसकी पुष्टि महाभारत में और किसी ने नहीं बल्कि दुर्योधन के बाप ने, धृतराष्ट्र ने की। जब भगवान शांतिदूत बनकर गए तो धृतराष्ट्र तो कुछ देख नहीं पा रहा था, भगवान ने अपना विश्वरूप जब दिखाया, विश्वरूप दुर्योधन को दिखाया, और दुर्योधन कर्ण इत्यादि को लेकर भगवान के विश्वरूप को बंदी बनाना चाहता था, भगवान के विश्वरूप को अरेस्ट करना चाहता था। तो जब धृतराष्ट्र ने यह बात सुनी कि ये भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप को बंदी बनाना चाहता है, तो धृतराष्ट्र से सहन नहीं हुआ। तो ये वाक्य धृतराष्ट्र के हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन को पूरी सभा में चिल्लाकर बोलता है, अरे कुल नाशक, कुल कलंकी, मैं क्यों तुझे पैदा किया, कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी जब तू पैदा हुआ? और वो मनुष्य घड़ी थी क्योंकि जब दुर्योधन पैदा हुआ तो गधे वो ढेंचू ढेंचू कर रहे थे, सारे अपशकुन पैदा हुए थे जब दुर्योधन पैदा हुआ था। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले दुर्योधन को कहा कि तूने जो ये गर्हित कर्म किया है कृष्ण को बंदी बनाने का, इसके वजह से ये जो हमारा कुल है ये पूरा नष्ट होने वाला है और तू उत्तरदायी रहेगा। तो ये और किसी ने नहीं, उनके स्वयं के प्रिय पिता धृतराष्ट्र, इनके वाक्य दुर्योधन के विषय में। और इसलिए दुर्योधन को अलग अलग तरीके से विदुर जी ने, भीष्म जी ने, धृतराष्ट्र ने, इन सब ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तू जो हठ कर कर बैठा है उसके वजह से ये पूरा कुल नष्ट होने वाला है। विदुर, इन्होंने भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, इन सब को उनके मुख पे कह दिया जाते समय, क्योंकि वो नहीं थे महाभारत के युद्ध के समय, उन्होंने कहा कि ये दुर्योधन के वजह से तुम सब पछताओगे। तो दुर्योधन, उसने कुल धर्म का नाश किया लोभ के कारण। रावण, रावण ने देखो, रावण विभीषण को खो बैठा, कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण के बेटे, उसने भी अपना पूरा कुल का नाश करवाया केवल उसकी काम वासना को पूरी करने के लिए, इस रावण ने। इसलिए रावण जब कुंभकर्ण को बुलाया नींद से उठाकर, वो भी कुंभकर्ण को नींद से उठाकर, तो कुंभकर्ण पहले क्रोधित था कि मुझे नींद से क्यों उठाया जब टाइम नहीं था मेरा उठने का। तो क्रोध में कुंभकर्ण आया और पूछा कि माजरा क्या है, इतना इमरजेंसी क्या हो गया कि मुझे उठाना पड़ा। तो जब बताया गया तो कुंभकर्ण पहले तो वो हंसने लगा, और इस प्रकार से व्यंग्यात्मक हंसी थी कुंभकर्ण की। तो कुंभकर्ण रावण से कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये एक सीता के पीछे तुमने मुझे उठाया और इतना बड़ा युद्ध छेड़ रखा है तुमने। अरे इतनी सारी तुम्हारी पत्नियां हैं, ये मंदोदरी है, इतनी सारी पत्नियां हैं, एक ये सीता के पीछे इतना क्यों पड़े हो तुम? और वो भी किसी और की पत्नी है वो। तो ये कुंभकर्ण ये रावण को शिक्षा दे रहे थे। विभीषण ने, कुंभकर्ण ने और भी सगे संबंधी, खाली एक वो इंद्रजीत जो उसका बेटा था उसको छोड़कर, तो रावण ने अपने कुल धर्म को नष्ट किया, भक्षक बना काम वासना के कारण। अश्वत्थामा के विषय में कहा गया है कि अश्वत्थामा वो पांडवों से बहुत द्वेष किया करता था। क्यों? क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य की बहुत सहानुभूति थी पांडवों के प्रति, और विशेष रूप से अर्जुन के प्रति। इसलिए अश्वत्थामा ने अपने पिता और अपने पूरे ब्राह्मण कुल के धर्म को मिट्टी में मिलाया उस नाम को, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या की। रात्रि के समय युद्ध हो चुका था, उसके पश्चात रात्रि के समय सारे युद्ध नियमों के उल्लंघन करते हुए, यहां तक कि अश्वत्थामा का वो हत्याकांड, द्रौपदी के 5 पुत्रों को उनके उनका सर काट कर लेकर आया जो दुर्योधन के पास, दुर्योधन मूर्छित रणभूमि में गिरा हुआ और देख भी नहीं पा रहा था दुर्योधन। दुर्योधन ने केवल अपने हाथ से ये जो सर 5 लेकर आया था अश्वत्थामा, उनको स्पर्श किया, और दुर्योधन ने जैसे ही ये सर को स्पर्श किया अपने हाथों से, दुर्योधन तुरंत जान गया बिना देखे कि ये पांडवों के सर नहीं हो सकते। तो जब पूछा तो अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं, मैं पांडव तो नहीं मिल पाए, तो पांडवों के 5 पुत्रों को मार कर ले आया। तो दुर्योधन ने गाली दी अश्वत्थामा को, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ये जो हमारे कुल को और आगे बढ़ाने वाले ये द्रौपदी के 5 पुत्र, क्योंकि दुर्योधन तो अभी मरने वाला था। तो दुर्योधन ने गाली देकर निंदा की अश्वत्थामा की कि अरे इतना नीच काम तुम कैसे कर सके। तो अश्वत्थामा, उसके पश्चात भी अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज को मारने के लिए ये तो किया ही, इसके बाद फिर परीक्षित महाराज जो कि उत्तरा के गर्भ में, परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को परीक्षित महाराज को बचाना पड़ा, उत्तरा को बचाना पड़ा, और फिर अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन जब लेकर आए, तो पूरी कथा श्रीमद् भागवत में है। तो अश्वत्थामा इतना द्वेष किया करता था कि उसे पूरा अंधा हो गया था, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसने अपना, अपने पिता का, पूरे कुल का नाम मिट्टी में मिलाया। कर्ण के विषय में कि कर्ण को यह जानकारी दी गई थी कि तुम सबसे अग्रज हो पांडवों में, तुम युधिष्ठिर के भी अग्रज हो, और यह पूरा राज्य तुम्हें मिलेगा। वो केवल अंग देश का राज्य लेकर कर्ण बैठा था। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कुंती कर्ण को कहे कि तुम यदि पांडवों के पक्ष में युद्ध करोगे तो तुम्हें ये पूरा हस्तिनापुर नहीं, पूरे पृथ्वी का राज्य तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम युधिष्ठिर के भी अग्रज हो। परंतु कर्ण ने अपनी दोस्ती, मैं जो दोस्त हूं दुर्योधन का, कैसे मैं उस दोस्ती में कोई बैर ला सकता हूं? नहीं, जो मुझे दुर्योधन ने सब कुछ दिया है, और दुर्योधन, हम सुने कि दुर्योधन ने अपना मित्र प्रेम किस लिए दिखाया था कर्ण को, पिछले हमने क्लास में सुना था। तो कर्ण कुसंग के वजह से उसने अपने कुल धर्म का नाश किया। अब कुछ कुल धर्म के रक्षक, सबसे पहले श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने जब देखा कि मेरे पिता जिन्होंने ये वचन कैकेयी को दिया, दो वचन जो कैकेयी को मिले, एक रामायण की टीका हुई है जिसका नाम है चंपू रामायण, और इसमें बताया गया है कि कैकेयी एक बहुत ही सुंदर सरोवर के समान थी जिसमें बहुत ही शुद्ध जल, परंतु उसके सतह में मिट्टी, तो कैकेयी के अंदर कुछ इस प्रकार का लोभ था अंदर कि भरत को राज्य मिले, परंतु वो एकदम उस सरोवर के नीचे भाग पे था। और मंथरा की तुलना की गई है एक भैंस से, तो मंथरा को कैकेयी ने इस सरोवर में प्रवेश देने की अनुमति की। तो भैंस यदि ऐसे सरोवर में जब जाती है तो भैंस करती क्या है, जो जितनी सारी मिट्टी है सब ऊपर उछालती है। तो ये मंथरा कैकेयी के सरोवर में जाकर उलट पुलट सारी मिट्टी को उल्टा की, ऊपर की। तो ये उदाहरण दिया गया है कि कैसे कैकेयी भी उस श्रेणी में आ सकती है, कुल धर्म भक्षक की श्रेणी में, मंथरा की वजह से, कुसंग की वजह से। और एक उदाहरण कैकेयी और मंथरा का दिया गया है कि कैकेयी सांप का बिल होता है, सांप के बिल के समान कैकेयी, और अक्सर देखा जाता है कि सांप के बिल से सांप वर्षा के ऋतु में बाहर आता है। जब वर्षा उस बिल में अंदर पानी, वर्षा का पानी अंदर चला जाता है तो वो सांप फिर बाहर आते हैं। तो मंथरा वर्षा के समान, कैकेयी सांप के बिल के समान, और दो सांप बाहर आए जब ये वर्षा का जल अंदर गया। कौन से दो? वो दो वरदान, एक तो भरत को राज्य मिलना चाहिए और 14 साल का वनवास राम को। तो रामचंद्र जी ने जब देखा कि कैकेयी ने जो वचन मांगा है और मेरे पिता ने ये वचन दिया है, तो मेरे पिता का नाम रखने के लिए, क्योंकि रघुकुल में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसने वचन दिया और वो वचन पूरा नहीं किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आजकल तो उल्टा, प्राण ले ही और वचन भी दे ही तो चलेगा, मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए। आजकल यदि मान लो कि कलयुग में यदि कोई ऐसी घटना हो जाए और कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि बेटा मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था, तो तुम 14 साल जाओगे वनवास? सबसे पहले तो पिता होने चाहिए बोलने के लिए ये बात, तो पिताजी को 14 वर्ष वृद्धाश्रम में रख देगा वो। जैसे कि एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि एक कंजूस व्यक्ति, वो अपने दादाजी के मृत्यु का समाचार पेपर में छापना चाहता था। तो पेपर वालों के पास गया तो पेपर वालों ने कहा कि भाई यदि तुम्हें कुछ समाचार छापना है तो एक एक शब्द का इतना खर्चा होता है, हर एक वर्ड का, जितना वर्ड तुम दोगे समाचार के लिए उतना खर्चा होगा। तो इसने पूछा कि कितना कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस में 5 वर्ड होने चाहिए, तो 5 वर्ड होंगे तो फिर वो थोड़ा सस्ते में काम हो जाएगा। तो अभी इन्होंने देखा कि इनको समाचार देना था, दादाजी गुजर गए, दादाजी डेड, तो ये तो 2 ही वर्ड हो गए, दादाजी डेड, परंतु खर्चा तो पूरे सेंटेंस का लगेगा, जिसमें पांच और तीन वर्ड डाल सकते हैं। तो उसने समाचार डाला, दादाजी डेड, मारुति फॉर सेल, खर्चा बचाने के लिए। और फिर मुझे बताया गया कि ये सही में ऐसी घटना हुई है, दादाजी डेड, मारुति फॉर सेल। मतलब अब ये खुशी का समाचार है या ये खुश खबर है या खुदकुशी की खबर है? तो रामचंद्र जी ने देखिए अपने पिता की बात रखने के लिए, अभी अभी उनका विवाह हुआ है, तो वो और कोई होता तो अपने पिता को कहता, मैं तो आया था शायद हनीमून की टिकट आप देने वाले हैं, कहीं स्विट्जरलैंड यहां घूम के आओ, ये तो 14 वर्ष वनवास की टिकट दे रहे हैं। परंतु अपने पिता का नाम रखने के लिए, यहां तक कि जब रामचंद्र जी वो चले गए, अब वन में चले गए, वहां पर निषाद राज गुहा, गुहा इन्होंने रामचंद्र जी के लिए बहुत बड़ा फीस्ट बनाया जैसे ही वो पहुंचे, और उन्होंने कहा कि छोड़ दो अयोध्या वगैरह सब छोड़ दो, यहां के राजा बन जाओ, यहां मैं जो राजा बना हूं ये पूरा राज्य आप यहां पे राजा बन के रहो, 14 वर्ष ये वन ही है, तो वन में भी रहोगे, राजा बन के भी रहोगे, और फिर चले जाना उसके पास 14 वर्ष बाद। तो फिस्ट मंगाया पूरा, परंतु रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैंने मुनि व्रत लिया है, मुनि वेश धारण किया है, इसलिए मुनि आहार भी मैं खाऊंगा, ये फिस्ट नहीं। तो रामचंद्र जी ने वो पूरा फीस्ट घोड़ों को खिलाया और स्वयं केवल कंदमूल खाए, और वो इसलिए कि यदि कैकई को पता लगेगा कि मैं यहां पर फीस्ट खा रहा हूं वन में, तो कैकई को बुरा लगेगा। सोचिए कौन व्यक्ति इतने उदार हृदय वाला हो सकता है, कैकई को बुरा न लगे इसलिए मैं कंदमूल खाऊंगा 14 वर्ष तक। तो इन्होंने किस प्रकार से धर्म की रक्षा की अपने कुल के। बलि महाराज, वामन देव की कथा है कि वामन देव, उन्होंने जब तीन पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य ने रोक दिया, हम कथा जानते हैं 8वें स्कंद से। और उस समय वामन देव बलि महाराज से कहते हैं कि बलि, तुम्हारे पूरे कुल में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपने कुल धर्म का पालन नहीं किया हो, जिसने अपने जो द्वार पे आया है उसे खाली हाथ भेज दिया हो, तो तुम अपने कुल धर्म के विषय में सोचो। तो बलि महाराज अपने कुल धर्म के विषय में सोचते हुए भी, और हालांकि जब उन्होंने जान लिया कि विष्णु स्वयं आए हैं तो फिर तो सर्वधर्मान परित्यज्य, उस सिद्धांत का उन्होंने पालन किया। तो बलि महाराज का उदाहरण है कैसे उनको जब याद दिलाया गया उनके कुल धर्म के विषय में कि कैसे कैसे आपके पूर्वज हुए हैं, तो उन्होंने उसका पालन किया। भरत ये हैं, कैकेयी के पुत्र भरत। तो जब भरत को समझ में आया कि मेरी मां के वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो भरत अपनी मां को वहीं पे मारने वाले थे, जान से खत्म करने वाले थे। परंतु फिर भरत जब चित्रकूट गए तो उन्होंने श्री राम से कहा कि मैंने कैकेयी का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो स्त्री है और वो इस कुल में है, पैदा हुई, ये नहीं कि वो मेरी मां है, क्योंकि हमारे कुल धर्म के विरुद्ध ये होता, इसलिए मैंने इसका वध नहीं किया, नहीं तो ये योग्य थी वध के ही केवल मेरे हाथों। तो भरत, उन्होंने वो धर्म, अपने कुल धर्म को सोचते हुए अपनी माता की हत्या नहीं की। सीता देवी वो इतने समय तक वहां पर रही अशोक वाटिका में, लंका में, और सीता देवी से जब ये पूछा गया तो सीता देवी ने कहा कि हालांकि कोई आसार नहीं लग रहे थे कि रामचंद्र जी आकर मुझे छुड़ाएं यहां से, और रावण ने सारे इतने अच्छे प्रस्ताव सामने रखे थे सीता के कि कि तुम मेरी पटरानी बन के रहोगी, अरे भूल जाओ उस राम को, क्या वैसे भी वनचारी है वो, क्या मिलने वाला है उसे, मेरे पास देखो सोने की लंका है। इतने सारे ऐसे प्रलोभन थे सीता के सामने, परंतु सीता ने वो पूरे समय वो रावण से मिला हुआ कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं पी, और सीता एकदम नाजुक और कमजोर हो चुकी थी उसके वजह से अपने कुल के धर्म का पालन करते हेतु। और एक बहुत सुंदर उदाहरण उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए द्रौपदी का है। हालांकि द्रौपदी के विषय में हमने सुना है, द्रौपदी की जो वस्त्र हरण वो घटना हुई, दुशासन ने जो प्रयास किया उस असत सभा में, तो हालांकि हम द्रौपदी की वो कथा सुने हैं, किसके संदर्भ में, कि द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनकी तरफ देखा कुछ सहायता मांगने के लिए, परंतु जब कुछ नहीं मिला, कहीं से कोई सहायता नहीं मिली, तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, हे कृष्ण हे गोविंद भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने आंतरिक रूप से क्यों पुकारा, केवल इसलिए नहीं कि जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे जो यहां पर दुशासन नग्न करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं अपने सतीत्व को बचाने का प्रयास करूं, केवल वही कारण नहीं था। हमारे आचार्य बताते हैं कि द्रौपदी उस समय अपने पतियों के विषय में सोच रही थी। देखिए बहुत ज्यादा ये ऐसी स्थिति जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को दुशासन उस भरी सभा में नग्न करने का प्रयास कर रहा। तो द्रौपदी अपने पतियों के विषय में सोच रही थी जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो कि असहाय थे, वो ये सोच रही थी कि यदि इनके सामने मुझे इस प्रकार से दुशासन ने यदि नग्न कर दिया तो ये अपना जीवन जी नहीं पाएंगे, ये मर जाएंगे, ये अपना मुंह किसी को नहीं दिखा पाएंगे। तो द्रौपदी अपने से ज्यादा उनके विषय में सोच रही थी कि कैसे ये ऐसा कलंकित जीवन आगे न जिए, इसलिए हे कृष्ण आप बचाइए मुझे, मेरे लिए नहीं इनके लिए। इसलिए द्रौपदी का गुणगान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से करते हैं जैसे किसी के पांच मुख हो, ये विशेष कारण के लिए। तो द्रौपदी ने अपने पतियों के कुल धर्म की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के शरणागत गई और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से बचवाया उनकी रक्षा करने हेतु, सबसे प्रथम उनकी रक्षा करने हेतु। और प्रहलाद महाराज, अब देखिए प्रहलाद महाराज के विषय में शंड और अमरक और हिरण्यकशिपु, शंड और अमरक ने जब सुना प्रहलाद महाराज अब प्रचार शुरू कर दिए, एक तो खुद विष्णु भक्ति कर रहे हैं और अब अपने सहपाठियों को प्रचार करना शुरू कर दिया, तो शंड और अमरक वो प्रहलाद से कहते हैं कि अरे तू अपने कुल का नाश कर रहा है। तो यदि प्रहलाद महाराज पूछे कौन सा कुल, तो वो बता रहे थे प्रहलाद महाराज को कि देखो तुम कैसे कुल में पैदा हुए, हिरण्यकश्यपु के आसुरी कुल में, जो सारे असुरों में सर्वश्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु। और उन्होंने ये उदाहरण दिया, प्रहलाद से कहते हैं कि जैसे कोई चंदन का वन होता है, चंदन के वृक्षों का वन होता है, और यदि कोई चंदन के पेड़ को काटना चाहे तो चंदन के पेड़ से ही लकड़ी तोड़ता है और उसी लकड़ी का हैंडल कुल्हाड़ी को लगाता है और फिर उसी चंदन के पेड़ को तोड़ता है। तो वैसे तुम हालांकि इतने अच्छे कुल में पैदा हुए, कौन से, हिरण्यकशिपु के कुल में तुम पैदा हुए, दैत्यों के कुल में तुम पैदा हुए, परंतु तुम विष्णु की भक्ति कर ये जो चंदन रूपी कुल है हिरण्यकशिपु का, इस चंदन रूपी कुल को काटने की कुल्हाड़ी के हैंडल तुम बने हो, इसी कुल से पैदा होकर। तो ये शंड और अमर वो सेमिनार दे रहे थे उदाहरण के साथ, पावर पॉइंट के साथ प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज उन्होंने जो अपनी भक्ति की, उनकी भक्ति के वजह से स्वयं नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को कहा, जो प्रहलाद महाराज पूछे कि मेरे पिता उनका उद्धार आप कर सकोगे क्या, तो स्वयं नरसिंह देव कहे कि तुम्हारे भक्त होने के वजह से 21 पीढ़ी ऊपर 21 पीढ़ी नीचे इन सब का उद्धार हो गया, केवल तुम जो मेरे भक्त बने हो उसके वजह से। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे देखिए किस प्रकार से अपने कुल धर्म की रक्षा की भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करकर। प्रश्न यह है कि ये कुल धर्म जो इतना अर्जुन चिंता कर रहे हैं इसका वास्तविक ध्येय क्या है, हम कलयुग में कैसे समझें कि कुल धर्म की रक्षा होनी चाहिए या नहीं, या हम केवल जो कलयुग का युग धर्म है उसी का पालन करें। यहां पर सबसे पहला कारण यह बताया गया है कि कुल धर्म का वास्तविक ध्येय होना चाहिए उदाहरण स्थापित करने हेतु। जैसे कि बलि महाराज को वामन देव ने क्या कहा कि तुम तुम्हारे कुल में देखो कि प्रहलाद महाराज जो तुम्हारे पूर्वज हुए उन्होंने क्या उदाहरण स्थापित किया। यदि हमें पूछा जाए कि आप कौन से कुल में पैदा हुए और आपके पूर्वज के उदाहरण से आपने क्या सीखा, तो क्या हम बलि महाराज, परीक्षित महाराज, इन जैसों की तरह हम क्या बोल सकते हैं कि हां हमारे जो दादा परदादा हुए उनसे हमने ये सीखा। ये सब भौतिक चीजें नहीं, कौन सी धार्मिक चीजें हमने उनसे सीखी। तो कुल धर्म को बरकरार रखने के लिए उसका एकमात्र ध्येय यह था ताकि जो पीढ़ी पैदा हुए उसमें उनको एक उदाहरण मिले कि हां हम इस कुल में पैदा हुए हैं जिन्होंने धर्म का पालन किया, जो धर्मनिष्ठ थे। और सामाजिक समृद्धि हेतु कि समाज किससे बनता है, ये सारे जो अलग अलग कुल हैं इनसे समाज बनता है, तो जब इसकी समृद्धि होती है या समाज की समृद्धि करना कराना है तो वो कुलों के धर्मों का पालन होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कोई कहता है कि हां ये हमारा ब्राह्मण समाज और ये हमारा ये समाज वो समाज, परंतु धर्म कितना पालन हो रहा है वो ब्राह्मण समाज में, ये वहां पर निर्धारित होना चाहिए, तब जाकर उस समाज की समृद्धि होगी। और अंततः वर्णाश्रम धर्म के पालन हेतु हम जो शुद्ध भक्ति में लगे हैं हमें भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है कि शुद्ध भक्ति अब कर सकें। तो इसलिए ये जो वर्ण और आश्रम है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, परंतु ध्यान में रखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जो कहे हैं उसके अनुसार, भगवान कहे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के ही द्वारा उनका विभाजन हुआ है, जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में। ये नहीं कि केवल पैदा हो गए तो बस अब मैं उस कुल में हूं, ये उस कुल में है। एक कथा सुनाई गई थी इसके संदर्भ में कि एक मंदिर था दक्षिण भारत में जहां पर इस प्रकार की प्रथा थी कि केवल ब्राह्मणों को अनुमति थी, वो भी कौन से ब्राह्मण जो पैदा हुए हैं ब्राह्मण कुल में, उनको अनुमति थी उस मंदिर में। तो एक बेचारा शूद्र, उसे जानकारी नहीं थी, तो मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, तो वहां के ब्राह्मण ने रोक दिया मंदिर के, नहीं तुम जब तक ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं होते तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं तुम्हें। तो इसने पूछा तो मैं ब्राह्मण कुल में कैसे पैदा हो सकता हूं, तो इसने कहा हम लोग जो खाते हैं और हमारा जो जूठा हम फेंकते हैं उसे तुम यदि पूरे जीवन भर खाओगे तो अगले जन्म में एक ब्राह्मणी के कोख से जन्म लोगे। तो ये शूद्र ये चले गए कि अब हो सकता है कि यही एकमात्र उपाय हो कि मैं भगवान का दर्शन इस मंदिर में उस तरीके से कर पाऊं। तो एक महीना बीता, फिर ये शूद्र उसी गांव के सामने के रास्ते से जा रहा था, तो इस ब्राह्मण ने रुकाया और पूछा, तो शुरू किया कि नहीं तुमने, हम ब्राह्मणों का उच्छिष्ट खाना शुरू किया कि नहीं? तो इस शूद्र ने कहा, नहीं, क्योंकि आपने उस दिन जो कहा उसके पश्चात मैं रात्रि में जब सो रहा था तो आपके ही मंदिर के विग्रह मेरे सपने में आए भगवान, और उन्होंने मुझे कहा इस मंदिर में बिल्कुल मत जाना कभी। तो ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा तुम्हारे सपने में हमारे भगवान आए और ये कहा, क्यों क्यों मत जाना मंदिर में? इन्होंने कहा कि भगवान ने सपने में मुझे कहा इस मंदिर में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि पिछले 30 साल से मुझे अंदर आने नहीं दे रहे, तो तुम्हें क्या आने देंगे। और उसी प्रांत में एक और घटना हुई कि एक इसी प्रकार का मंदिर था जहां पर कर्मकांडी तरीके से भगवान की पूजा की जाती थी। तो उस मंदिर के बगल में एक व्यक्ति ने मदिरालय खोला, लिकर शॉप। तो अब ये मंदिर के रेपुटेशन की बात आ गई कि मंदिर के बगल में मदिरालय, तो इन्होंने कोई यज्ञ किया उसकी दुकान खत्म हो जाए, उसकी दुकान बर्बाद हो जाए, उसका धंधा चौपट हो जाए, उसके लिए एक यज्ञ किया और प्रार्थना की मंदिर में उनके भगवान से। और हुआ क्या कि यज्ञ और प्रार्थना होने के पश्चात उसकी पूरी दुकान बिजली कड़की और पूरी दुकान जलकर भस्म, एक हफ्ते में हुआ। अब इसे समझ में आ गया, ये जो यहां का ओनर था मदिरालय का, तो ये गया कोर्ट में, केस किया इसने। और कोर्ट में केस पे बोलता क्या है कि ये जो मंदिर वाले हैं इनके वजह से मेरी दुकान जली है। तो उसने केस कर दिया और केस में ये कहा कि जब जज ने पूछा कि भाई तुम कैसे साबित कर सकते हो कि इन्होंने तुम्हारी दुकान जलाई, तो ये कहता है ये इन्होंने प्रार्थना की थी, इन्होंने प्रार्थना की थी और इनकी प्रार्थना की वजह से मेरी दुकान जली। तो जब इनको कोर्ट में बुलाया गया और पूछा गया भाई ये ऐसे कह रहा है, तो इन्होंने ये डर गया, कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बोले नहीं नहीं नहीं, हमने कोई प्रार्थना एक नहीं की, और हम तो वैसे भी प्रार्थना करते रहते हैं परंतु कुछ होता नहीं। तो जज यहां पर इसको पूछ रहा है कि भाई ये लोग कहते हैं कि इन्होंने प्रार्थना की नहीं और करते भी हैं तो प्रार्थना काम नहीं करती। तो ये कहता नहीं, मैं जानता हूं, मैंने देखा इन्होंने प्रार्थना की और इन्होंने वो यज्ञ भी किया और उसके वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये वाद विवाद चल रहा था, ये लोग मना कर रहे थे कि नहीं हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, और ये मदिरालय वाला बोल रहा है कि नहीं इनकी प्रार्थना से हुआ है। तो जज ने फिर कहा ये पंडितों को तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे ज्यादा इसको विश्वास है तुम्हारी प्रार्थनाओं पर, इसको इतना विश्वास कि ये टस से मस नहीं हो रहा कि इनकी प्रार्थना के वजह से ही हुआ है। तो तुम जाओ और थोड़ा इससे सीखो कि कैसे विश्वास होना चाहिए प्रार्थनाओं के ऊपर। तो हम जब किसी भी धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो धर्म का जो मर्म है उसे समझना है हमें। इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार चाहे कोई कुल धर्म हो, चाहे राष्ट्र धर्म हो या सामाजिक धर्म हो, यहां पर बताया गया है कि सर्वोच्च धर्म क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, सर्वोच्च धर्म वो है हम सब मनुष्यों के लिए। जब श्री अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई लगता है, और वो भी किस तरीके से, बिना किसी हेतु के और बिना रुकावट के, ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु के और बिना रुकावट के जब वो भक्ति की जाएगी, तब वो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट वो भक्ति करेगी और वो ही सर्वोच्च धर्म है। हमारे कुछ इस्कॉन के पास जाति अमेरिकी यूरोपियन भक्त जब वो पहली बार वृंदावन आए, तो वो वृंदावन के एक मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, गोस्वामी का मंदिर था। तो वहां पर वो जब पहली बार देखा कि एक अमरीकी वैष्णव तिलक धारण किए हैं और शिखर इस प्रकार से गेरुआ वस्त्र, तो वहां मंदिर का जो पंडा था उसने उनसे कहा कि तुम इसी प्रकार से इस जन्म में भक्ति करते रहो तो अगले जन्म में तुम हमारे गोस्वामी कुल में पैदा होगे और फिर तुम्हें अनुमति मिलेगी अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए। तो वो इतना खुश हो गए कि अरे मुझे वरदान मिला, उनको लगा कि ये उनको ब्लेसिंग्स मिला है इस प्रकार। तो गए प्रभुपाद के पास एकदम खुशी खुशी और प्रभुपाद से कहे कि मैं आज ये गोस्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया और वो गोस्वामी जी ने मुझे ये वरदान दिया कि तुम ऐसे ही हरे कृष्ण जपते रहो और तुम जब ये शरीर त्यागोगे तब फिर तुम हमारे गोस्वामी कुल में पैदा होगे और फिर तुम हमारे अर्च विग्रह की सेवा कर पाओगे। प्रभुपाद ने जब सुना तो प्रभुपाद ने कहा जाओ उसके पास और उस पंडे से कहो कि वो जो अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है ना, वो ठीक से करे और पूरी ठीक से सेवा करने के पश्चात जब वो मरेगा तो उसे उस सेवा का फल ये मिलेगा कि फिर वो इस्कॉन में पैदा होगा एक गुड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। दैट बाय ऑल ऑफ हिज डीटी वर्शिप द क्रेडिट विच ही विल गेट इज दैट ही विल टेक बर्थ इन द इंटरनेशनल सोसाइटी एज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जाके बताओ, तो भी इनको समझ में आया कि वो वरदान नहीं था। तो ये है परो धर्म। इसलिए इतने सारे जो कुल धर्म और स्त्री धर्म, सारे धर्म शास्त्र से अर्जुन ने सब कुछ सुनाया, अंततः भगवान ने क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम जब तक सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, चाहे तुम युद्ध करो या न करो, वो करने में भी पाप नहीं करने में भी पाप यदि वो तुम मेरे निर्देशन में नहीं करोगे। तो इसलिए ये है सर्वोच्च धर्म। और अर्जुन अब आगे भगवान श्री कृष्ण को अगले श्लोक में कुलक्षय प्रणश्यंती के वजह से क्या होने वाला है, अब स्त्रियों का नाश, स्त्री धर्म का नाश होने वाला है। तो अर्जुन बहुत सोच विचार कर रहे हैं, केवल ऐसा नहीं कि सामने उन्होंने इन कौरवों को देखा और अर्जुन भविष्य के विषय में नहीं सोच रहे, अर्जुन की सराहना करनी चाहिए कि अर्जुन इतने उदार हृदय वाले कि अपने विषय में बिल्कुल न सोच के अर्जुन इनके परिवारों के विषय में सोच रहे हैं, इनके कुल के विषय में सोच रहे हैं, इनके कुल की स्त्रियों के विषय में सोच रहे हैं और जो अब तक पैदा भी नहीं हुए उनके विषय में सोच रहे हैं कि यदि इनका नाश होगा तो वो जो संतान वर्ण संकर पैदा होगी उनका क्या होगा। तो ये अर्जुन का उदार हृदय यहां पर हमें दिखता है। तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को, जिसमें अब अर्जुन कुलक्षय प्रणश्यन्ति के पश्चात उसके आगे क्या परिणाम है वो सुनाने वाले हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? फिर से हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि 27 तारीख को हम दशहरा मना रहे हैं और विशेष बंबई से हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु आएंगे दशहरे का कार्यक्रम यहां पर होगा और आज हमारे मध्य बहुत ही विशेष मुंबई से भक्त आए हुए हैं, हिज ग्रेस दामोदर प्रभु जो हम सब के बीच में वहां ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं। दामोदर प्रभु आज बहुत विशेष फीस्ट है आप लोगों के लिए जो उन्होंने अपने हाथों से दोपहर से बना रहे हैं वो, और हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के वो प्रचारक भी हैं वहां पर और किचन के इंचार्ज भी हैं। यहाँ पर हमने विशेष रूप से उनको बुलाया है कि हमारा किचन को देखकर क्या उसमें हम सुधार ला सकते हैं। तो आज का फीस्ट उन्होंने बनाया है, बहुत ही विशेष है। और हालांकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बॉम्बे आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, बीटेक एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वो मंदिर में अभी बहुत ही दृढ़ता से अपनी सेवा कर रहे हैं, प्रचार का कार्य और ये किचन का। यहाँ पर आकर हम सब के लिए इन्होंने आज इतना सुंदर फीस्ट बनाया, वो आप खा पाएंगे यदि मैं खत्म करूंगा आज का प्रवचन। तो ये हमारे